शांति, ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं। 2007 की मुरलियां चल रही है और ये मुरली है 30/11/2007। दादी जी 25 अगस्त को 2007 में अव्यक्त हुए थे, तो बाबा ने कैसे दादी जी के साथ बच्चों की स्थिति देखी। दादी जी की स्थिति तो कितनी ऊंची थी, पर बच्चों की स्थिति क्या देखी दादी जी ने, तो बाबा ने उसका वर्णन किया है। और आज की मुरली का मुख्य सार है सत्यता और पवित्रता। पवित्रता सबका आधार है। पवित्रता है तो सत्यता भी है, पवित्रता है तो दिव्यता भी है। और दिव्यता वो प्रैक्टिकल में दिखाई देनी चाहिए, तब कहेंगे पवित्रता है। और यही पवित्रता फिर भविष्य में वो नेचुरल रूप में बन जाती है। तो वो कैसे दिखाई देती है पवित्रता, वो आज बाबा ने स्पष्ट किया है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य, बहुत ही गहरी मुरली है, सभी बहुत बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे, क्योंकि जीवन में ये अगर धारणा होगी तभी तो हम सच्चे सच्चे पक्के पक्के ब्राह्मण कहलाएंगे। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य आज 9/11/2025 है और ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं 30/11/2007 की। सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो, कैसे? सत्यता और पवित्रता को, पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने चारों ओर के सत्यता स्वरूप, शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। कौन से बच्चों को देख रहे हैं? सत्यता स्वरूप और शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। सत्यता के लिए तो कितनी बातें बाबा कहते हैं, तो सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इस सत्यता की शक्ति का आधार क्या है? संपूर्ण पवित्रता। तो सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। अब पवित्रता मतलब मन वचन कर्म संबंध संपर्क। स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्रता। मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो, ऐसी पवित्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देगा? सत्यता तो है ही, लेकिन और साथ साथ तो बाबा कहते ऐसी पवित्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता? ऐसी पवित्र आत्मा के चलन और चेहरे में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देती है। चेहरे से तो पता चल जाता है ना, मन की स्थिति क्या है वो चेहरे से पता चल जाता है। तो ऐसी पवित्र आत्मा के चलन और चेहरे में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देती है। उनके नैनों में क्या दिखाई देगा? उनके नैनों में रूहानी चमक और चेहरे में सदा हर्षित मुक्ता, सदा हर्षित, और चलन में हर कदम में बाप समान कर्म योगी। ऐसे सत्यवादी सत्य बाप द्वारा इस समय आप सभी बन रहे हो। दुनिया में भी कई अपने को सत्यवादी कहते हैं, सच भी बोलते हैं। कई कहते हैं ना, मैं तो सत्यवादी हूं, मैं तो सच ही बोलता हूं, तो सच भी बोलते हैं। लेकिन क्या कमी है? लेकिन संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है, वो आधार है पवित्रता। लेकिन संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है, जो इस समय इस संगम युग में आप सभी बन रहे हो। इस संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति है, अब संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति क्या है? सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति। जिसकी प्राप्ति ये सत्यता और पवित्रता की शक्ति, इसकी प्राप्ति सतयुग में आप सभी ब्राह्मण सो देवता बन आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र बनते हो। सारे सृष्टि चक्र में और कोई भी आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं बनते हैं। केवल देवताएं ही हैं जो शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र बनते हैं, क्योंकि बाकी सब तो द्वापर युग से आते हैं, तो चलो पवित्र रहते भी होंगे, पर शरीर तो पवित्र नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं सारे सृष्टि चक्र में और कोई भी आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं बनते। आत्मा से पवित्र बनते भी हैं, लेकिन शरीर पवित्र नहीं मिलता। तो ऐसी संपूर्ण पवित्रता इस समय आप सब धारण कर रहे हो। फलक से कहते हो, अभी तो हमारा भी शरीर तो पवित्र नहीं है, पर आत्मा तो पवित्र बनती जा रही है, और फिर पवित्र बन गई तो शरीर तो छूट जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये बन रहे हो, तो ऐसी संपूर्ण पवित्रता इस समय आप सब धारण कर रहे हो। और फलक से कहते हो, क्या कहते हैं हम नशे से, क्या कहते हैं? याद है क्या फलक से कहते हो? याद करो फलक से क्या कहते हो। सभी दिल से कहते हैं, अनुभव से कहते हैं कि पवित्रता क्या है हमारा। हम क्या कहते हैं? पवित्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकार है हमारा पवित्रता, बाबा के बने तो पवित्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जन्मसिद्ध अधिकार तो सहज प्राप्त होता है, क्योंकि पवित्रता व सत्यता प्राप्त करने के लिए आप सभी ने पहले अपने सत स्वरूप आत्मा को जान लिया। मैं आत्मा सत हूँ, चैतन्य हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, या आत्मा के सत्य स्वरूप को जान लिया। अपने सत बाप, शिक्षक, सत गुरु को पहचान लिया। पहचान लिया और केवल पहचान नहीं लिया, और क्या किया? और पा लिया। हम कहेंगे ना, अभी हमने शिव बाबा को पा लिया, पहचान लिया। ये तो पहली स्टेज थी, पहचान लिया और पा लिया। जब तक कोई अपने सत स्वरूप व सत बाप को नहीं जानते, तो संपूर्ण पवित्रता, सत्यता की शक्ति आ नहीं सकती। परमात्मा सत्य है, तो जब तक उस सत्य स्वरूप, जब तक कोई अपने सत्य स्वरूप व सत्य बाप को नहीं जानते, तो संपूर्ण पवित्रता, सत्यता की शक्ति आ नहीं सकती। मैं आत्मा भी सत्य हूँ, परमात्मा भी सत्य हूँ, ये सत्य स्वरूप व सत्य बाप को नहीं जानते, तो संपूर्ण पवित्रता, सत्यता की शक्ति आ नहीं सकती। वो तभी आएगी, वो संपूर्ण पवित्रता और सत्यता की शक्ति, जब सत्य आत्मा का स्वरूप और सत्य परमात्मा के स्वरूप को जानेंगे। तो आप सभी सत्यता और पवित्रता की शक्ति के अनुभवी हो ना, क्योंकि जान भी लिया, पहचान लिया, परमात्मा के बन भी गए। तो बाबा कहते हैं, तो आप सभी सत्यता और पवित्रता के की शक्ति के अनुभवी हो ना, हो अनुभवी, हो अनुभवी। हाँ, देखो बाबा पूछ रहे हैं, हो अनुभवी। वो लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रूप में न अपने स्वरूप न सत्य बाप के यथार्थ स्वरूप को जान सकते हैं। और आप सबने इस समय के अनुभव द्वारा पवित्रता को ऐसे सहज अपनाया है। कैसे सहज अपनाया है? पवित्रता तो हमने ऐसा सहज अपनाया है जो इस समय के प्राप्ति की प्रारब्ध देवताओं की पवित्रता नेचुरल हो जाती है। अभी की जो हम सहज पवित्रता अनुभव करते हैं, इसकी प्रारब्ध सतयुग में देवताओं में नेचुरल पवित्रता हो जाती है। और नेचुरल भी होती है और नेचर भी होती है पवित्रता। ऐसी नेचुरल नेचर का अनुभव आप ही प्राप्त करते हो। तो चेक करो कि पवित्रता व सत्यता की शक्ति नेचुरल रूप में बनी है। आप क्या समझते हो? जो समझते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो नेचुरल स्वरूप में बनी है, वो हाथ उठाओ। देखो सब नहीं उठा रहे हैं, थोड़े थोड़े उठा रहे हैं, तो हाथ उठाओ। जन्मसिद्ध अधिकार है या मेहनत करनी पड़ती है? अब जन्मसिद्ध अधिकार तो सहज होना चाहिए ना। अगर मेहनत करनी पड़ती है, इसका मतलब अभी तक उसको जन्मसिद्ध अधिकार नहीं समझ रहे हैं। जन्मसिद्ध अधिकार है या मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत करनी तो नहीं पड़ती है ना, सहज है ना। क्योंकि जन्मसिद्ध अधिकार तो सहज प्राप्त होता है। और अगर ये समझेंगे ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है पवित्रता, तो क्यों मेहनत करनी पड़ेगी? मेहनत नहीं करनी पड़ती। दुनिया वाले तो असंभव समझते हैं पवित्रता को, तो असंभव समझते हैं। और आपने असंभव को संभव, और केवल संभव नहीं और सहज बना दिया है। जो चीज सहज है वो तो संभव तो क्यों नहीं होगी, तो संभव भी और सहज बना दिया है। जो नए नए बच्चे आए हैं, जो पहली बार आए हैं, वो हाथ उठाओ। बाबा ने उनसे उनको हाथ, अच्छा इसमें भी है क्या पहली बार, हाथ उठाओ भाई पहली बार। अच्छा ठीक, तो देखो बाबा ने पहली बार आए वो को क्या कहा है? जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, जो नए नए बच्चे हैं, हाँ पहली बार आए हैं माना नए नए बच्चे हैं, मुबारक हो नए पहली बार आने वालों को, भाई मुबारक हो आपको, क्योंकि बाप दादा कहते हैं कि भले लेट तो आए हो, लेकिन लेट आए हो, लेकिन क्या नहीं आए हो, टू लेट नहीं आए हो। उस समय तो टू लेट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि 2007 था, अभी उसको भी कितने बरस हो गए, 18 साल। तो बाबा कहते हैं, बाप दादा कहते हैं कि भले लेट तो आए हो, लेकिन टू लेट में नहीं आए हो। और नए बच्चों को बाप दादा का वरदान है, क्या वरदान देते हैं बाबा नए बच्चों को? लास्ट वाला भी फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। आज बाबा ने कहा डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट नहीं आ सकते हैं। अभी लेट तो काफी हो गए हैं ना, जो आदि रतन यज्ञ के सेवा के, वो तो फर्स्ट है ही है। तो अभी आए हो लेट, लेकिन लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, बाबा ने ऐड किया है फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन माना राजाई घराने में, पर राजा तो बनना फिर उसके लिए इतनी मेहनत करनी होगी। तो बाबा कहते हैं तो फर्स्ट नंबर नहीं, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हो। तो नए बच्चों को इतनी हिम्मत है, आठ, अच्छा हाथ उठाओ जो फर्स्ट आएंगे, और फर्स्ट वाले हाथ उठाओ जो फर्स्ट आएंगे, हाँ हिम्मत है फर्स्ट आएंगे। देखना टीवी में आपका हाथ दिखाई दे रहा है, अच्छा हिम्मत वाले हो, मुबारक हो हिम्मत की। और हिम्मत है तो बाप की तो मदद है ही है, हिम्मत बच्चे बाबत मदद बाप तो है ही है, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार की भी शुभ भावना शुभ कामना आपके साथ है। नए बच्चों को बाबा कहते हैं सारा परिवार भी आपके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखता है कि आप लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट आओ। सर्व ब्राह्मण परिवार की भी शुभ भावना शुभ कामना आप सबके साथ है। इसलिए जो भी नए पहली बार आए हैं, उन सब के प्रति बाप दादा और परिवार की तरफ से दोबारा पदम गुना बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तीन बार बाबा ने पहली बार आए वे बच्चों को कहा। आप सभी जो पहले आने वाले, हाँ जो पहले आने वाले पुराने हैं, आप सभी जो पहले आने वाले हैं, उनको भी तो खुशी हो रही है ना कि नए नए आए हैं बच्चे और वो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाएंगे, तो पुरानों वालों को भी तो खुशी होती है ना, क्या होगी कि कहीं हमारी सीट न ले ले, ऐसे होता है ना, हमारी सीट न ले ले, तो उन लोगों को भी तो खुशी हो रही है ना। बिछड़ी हुई आत्माएं फिर से अपने परिवार में पहुंच गए हैं। पहली बार आए हुए वो को बाबा कहते हैं बिछड़ी हुई आत्माएं फिर से अपने परिवार में पहुंच गए हैं, तो बाप दादा भी खुश हो रहे हैं और आप सब भी खुश हो रहे हो। बाप दादा ने वतन में दादी जी के साथ, हाँ देखो दादी जी बाबा के साथ है, तो दादी के साथ एक रिजल्ट देखी। अब सब बच्चों की रिजल्ट दादी जी के साथ बाबा ने क्या देखी, क्या रिजल्ट देखी? आप सभी जानते हो मानते हो कि हम मालिक सो बालक है। अब जन्म से अधिकार है, मालिक है तो बालक भी है ना, मालिक और बालक, मालिक भी हो और बालक भी हो, सभी हैं, हाथ उठाओ मालिक और बालक दोनों हो। देखो अभी इसमें भी सब हाथ नहीं उठा रहे हैं, मालिक और बालक सभी हो, हाथ उठाओ फिर से, देखो सब क्यों नहीं उठा रहे हैं? दोनों नहीं हो क्या? हो। बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं, तब बाबा कहते हैं अच्छा, तो फिर हाथ उठाया, तो सबने हाथ उठाया, तो फिर बाबा कहते हैं सोच के हाथ उठाना। अब देखो बाबा के क्या इसमें बात आएगी, सोच के हाथ उठाना कि बालक भी हो और मालिक भी हो, ऐसे नहीं। फिर हिसाब लेंगे बाबा, अब हाथ तो उठा लिया बाबा, हिसाब लेंगे। अच्छा हाथ नीचे करो, हाथ उनका ऊपर ही था, तो हाथ नीचे करो। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय और नशा ये तो सहज रहता है ना। सब क्या कहते हैं, बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, तो बालकपन का नशा तो सहज रहता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो, तो बालक तो हो तभी तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना, ब्रह्मा की संतान और शिव बाबा की तो हो ही। और सारा दिन मेरा बाबा यही स्मृति में लाते हो, पर फिर भूल भी जाते हो, कई बार भूल जाते हैं क्या मेरा बाबा, भूल जाते हैं क्या? बाबा कहते फिर भी थोड़ा कभी भूल जाते हो, लेकिन बीच बीच में फिर याद आता है मैं बालक हूँ। और सेवा में भी बाबा बाबा शब्द नेचुरल मुख से निकलता है। यहाँ भी जब शिविर में आते हैं या विंग्स के प्रोग्राम में आते हैं, तब उनको हम यही कहते हैं, यहाँ आप जहाँ भी जाएंगे ना, आपको सब कहेंगे बाबा, हाँ बाबा ने ये किया, बाबा ने ये किया। तो हम बाबा किसको कहते हैं? हम शिव बाबा को बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा को भी बाबा कहते हैं, दोनों पिता है, तो उनको ये समझाना पड़ता है आपके भी वो बाबा है, तो फिर वो भी बाबा बाबा कहना शुरू कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं, और सेवा में भी बाबा बाबा शब्द नेचुरल मुख से निकलता है। अगर बाबा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कोर्स कराते हो, भिन्न भिन्न टॉपिक्स पर करते हो, सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप व प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सुनने वाले भी अनुभव करें कि मैं भी बाबा का हूँ। ये है प्रत्यक्ष फल, जिनको सुनाते हो ज्ञान वो भी अनुभव करे कि मैं बाबा का हूँ, उनके मुख से भी बाबा बाबा शब्द निकले। कोई ताकत है ये नहीं, अभी क्या कहते हैं, अभी कोई ताकत है यहाँ, हाँ ये नहीं केवल निकले कोई ताकत है, पर ये बाबा है स्वयं भगवान है ये निकले। ये ताकत है ये नहीं अच्छा, ये ताकत है ये नहीं अच्छा है ये भी नहीं, लेकिन मेरा बाबा अनुभव करे, इसको कहेंगे सेवा का प्रत्यक्ष फल। तो बालकपन का नशा व निश्चय फिर भी अच्छा रहता है। हाँ बाबा ने उसमें हाँ कहा थी, अच्छा नशा रहता है बालकपन का, लेकिन मालिकपन का निश्चय और नशा नंबरवार रहता है। अब मालिकपन का नशा क्या है? बालकपन से मालिकपन का प्रकलन और कभी दिखाई देता है कभी कम दिखाई देता है। बालकपन का तो नशा है, पर मालिकपन का नशा प्रैक्टिकल चलन और चेहरे से नशा ये कम दिखाई देता है। हाँ मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे याद आया, यहाँ पर मैसूर के राजकुमार आए थे प्रोग्राम में, राजाओं के प्रोग्राम में मैसूर के राजकुमार आए थे, तो या पांडव भवन भी देखने आए थे, बहुत लोग उनके साथ थे, लेकिन क्या उसका नशा था ना, वो ज्यादा कोई भवका नहीं था, लेकिन उसके चेहरे में उसकी चलन में उसके बोल में वो नशा था ना, कि मैं तो महाराजा का बच्चा हूँ राजकुमार हूँ, तो मैसूर स्टेट तो बहुत ही अच्छी स्टेट है ना। तो बाबा कहते तो बाबा तो सचमुच देखा कि उसमें कितना नशा था, और उस फखुर से चल रहा था धीरे धीरे ऐसे उसी रॉयल्टी से। तो बाबा कहते हैं बालकपन से मालिकपन का प्रैक्टिकल चलन और चेहरे से नशा कभी दिखाई देता है, कभी कम दिखाई देता है। वास्तव में आप तो डबल मालिक हो, एक बाप के खजानों के मालिक हो। हाँ, सभी मालिक हो ना खजानों के। कितने खजाने बाबा ने दिए, ज्ञान गुण शक्तियां, इन सब खजानों के मालिक है ना। और बाप ने सभी को एक जितना ही खजाना दिया है, कोई को लाख दिया हो, कोई को हजार दिया हो, ऐसा तो नहीं है ना। सभी को सब खजाने बेहद के दिए, ज्ञान भी सबको एक जैसा, गुण भी शक्तियां भी सब एक जैसे दिए, बेहद के भी दिए हैं। क्योंकि बाप के पास बेहद के खजाने हैं, कम नहीं है। तो बाप दादा ने सभी को सर्व खजाने दिए हैं और एक जैसे एक जितने दिए हैं। और दूसरा क्या दिया, दूसरा स्वराज्य के मालिक हो। इसलिए हाँ, स्वराज्य के भी यह मालिक है। स्व पर तो राज्य है ना, तो वो भी मालिक है। इसलिए बाप दादा फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। तो राजा बच्चे हो ना, प्रजा तो नहीं ना। राजयोगी हो या प्रजा योगी हो, राजयोगी हो ना, तो स्वराज्य के मालिक हो। लेकिन बाप दादा ने दादी के साथ रिजल्ट देखी। अब क्या रिजल्ट देखी दादी ने भी, तो जितना नशा बालकपन का रहता है उतना मालिकपन का कम रहता है। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, ये मालिकपन का नशा कम रहता है। क्यों? अगर स्वराज्य के मालिकपन का नशा सदा रहता तो ये जो बीच बीच में समस्याएं व विघ्न आते हैं वो आ नहीं सकते, है ना। विघ्न क्या है मालिक के सामने, वो विघ्न आ नहीं सकते। वैसे देखा जाता है तो समस्या व विघ्न आने का आधार क्या है, क्यों आते विघ्न और समस्याएं, उसका आधार विशेष है मन। है तो मन की बात, कमजोर मन है तो लगता है कि बहुत विघ्न है, बहुत समस्याएं हैं, बहुत चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं, क्योंकि मन कमजोर है। तो विघ्न आने का आधार विशेष मन है। मन ही हलचल में आता है, इसलिए बाप दादा का महामंत्र भी है। मन के लिए बाबा ने क्या महामंत्र दिया है, मन मना भव, मन को मेरे में रखो। तन मना भव, धन मना भव नहीं, मन मना भव। तो अगर स्वराज्य का मालिक है तो मन मालिक नहीं है, मन तो आपका सेवक है, आप मालिक हो अगर स्वराज्य अधिकारी है तो। अगर स्वराज्य का मालिक है तो मन मालिक नहीं है, मन तो आपका कर्मचारी है, राजा नहीं है। जैसे इंद्रियां कर्मचारी है तो मन भी तो कर्मचारी है, राजा नहीं है। राजा अर्थात अधिकारी, अधीन वाले को राजा नहीं कहा जाता है। तो रिजल्ट ने क्या देखा कि मन का मालिक मैं राज्य अधिकारी मालिक हूं, यह स्मृति या आत्मस्थिति कम रहती है, सदा नहीं रहती है। पहला पाठ, मैं आत्मा हूं, ये पहला पाठ है। आप सबने पहला पाठ क्या किया था, जब आए थे नए, ज्ञान लिया, कोर्स किया, तो पहला पाठ कौन सा मिला था, मैं आत्मा हूं। तो है पहला पाठ, आप सबने पहला पाठ क्या किया था, मैं आत्मा हूं। परमात्मा का पाठ भी दूसरा नंबर है, वो दूसरे दिन दिया होगा परमात्मा का पाठ। पहला पाठ तो मैं आत्माओं का मिला, लेकिन पहला पाठ मैं मालिक राजा इन कर्म इंद्रियों का अधिकारी आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, सर्व शक्तियां आत्मा के निजी गुण हैं। तो बाप दादा ने देखा कि जो मैं हूँ, जैसा हूँ, कि जो मैं हूँ, मैं जैसा हूँ, उसको नेचुरल स्वरूप स्मृति में चलना, रहना, चेहरे से अनुभव होना, समस्या से किनारा होना, इसमें अभी और अटेंशन चाहिए। बाबा ने बड़ा पॉजिटिव बोला, ये नहीं बोला नहीं है, लेकिन क्या बोला, और अटेंशन चाहिए। सिर्फ मैं आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं, अगर ये स्मृति में रखो तो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के आगे समस्या व विघ्न की कोई शक्ति नहीं आ सकती। अभी भी रिजल्ट में कोई न कोई समस्या व विघ्न दिखाई देता है। हाँ, कई बार तो किनसे पूछते, कैसे हो, ठीक है, चल रहा है, माना जरूर कोई भारीपन है, ठीक है, चल रहा है, मैंने कहने का मतलब क्या है। तो बाबा कहते हैं, अभी जो रिजल्ट में कोई न कोई समस्या व विघ्न दिखाई देता है, जानते हैं, लेकिन चलन और चेहरे में निश्चय का प्रत्यक्ष स्वरूप रूहानी नशा वो और ही प्रत्यक्ष होना है, होना चाहिए। इसके लिए यह मालिकपन का नशा, इसको बार बार चेक करो। मैं आत्मा, इस मन का मालिक हूँ, ये बाबा कहते हैं, स्वराज्य अधिकारी हूँ, ये नशा चेक करो। सेकंड की बात है चेक करना, क्या बड़ी बात है। कर्म करते, कोई भी कर्म आरंभ करते हो, आरंभ करने टाइम चेक करो। कोई भी कार्य चेक करते हो तो आरंभ करने टाइम चेक करो। मालिकपन की अथॉरिटी से कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाली आत्मा, रूलिंग पावर वाली आत्मा समझ कर्म शुरू किया या साधारण कर्म शुरू हुआ, बस ऐसे ही शुरू कर दिया, या मैं आत्मा मालिक हूँ, इंद्रियों का मालिक हूँ, मन का, ये अंदर सोच कर कर्म शुरू किया या साधारण कर्म शुरू हुआ। स्मृति स्वरूप से कर्म आरंभ करना और साधारण स्थिति से कर्म आरंभ करना, उसमें बहुत फर्क है। जैसे हद के मर्तबे वाले अपना कार्य करते हैं तो कार्य की सीट पर सेट होके फिर कार्य आरंभ करते हैं, है ना, कहते हैं जैसे बैंक में जाते हैं, मैनेजर से मिलना है। अब मैनेजर अभी पहुंचा रहा, हम उनसे बात कर रहे हैं, मान लो वो कहेगा, बहन जी अभी अभी छोड़ो, अब मैं पहले सीट पर सेट हो जाऊं, मैं अपनी कुर्सी पर बैठूं, फिर बात करना, रास्ते रास्ते में बात नहीं करना होता। तो इसीलिए सीट पर सेट हो तब वो मालिक बनने का भी तो नशा आएगा ना। तो बाबा कहते हैं, जैसे हद के मर्तबे वाले अपना कार्य करते हैं तो कार्य की सीट पर सेट होके फिर कार्य आरंभ करते हैं, ऐसे अपने मालिकपन के स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट होके फिर हर कार्य करो। इस मालिकपन के अथॉरिटी की चेकिंग को और बढ़ाना है। हम कई बार दादी जानकी को भी देखते थे, दादी जानकी से कुछ पूछो ना, सीधा तुरंत जवाब नहीं देती थी, थोड़ा सोचकर, तो तुरंत जवाब नहीं देती थी। क्यों नहीं देती थी, पहले वो सीट पर सेट होकर के देती थी। तो बाबा कहते हैं, और इस मालिकपन की अथॉरिटी की निशानी है, अब क्या होगी इसकी निशानी, अगर मालिकपन के नशे अथॉरिटी से कोई कार्य करेंगे तो सदा हर कार्य में डबल लाइट और खुशी की अनुभूति होगी, डबल लाइट और खुशी की अनुभूति होगी, और रिजल्ट सफलता सहज अनुभव होगी। अभी तक भी कहां कहां अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हो। अधीनता की निशानी क्या दिखाई देती है, कैसे पता चलता है अभी अधिकारी आत्मा नहीं है, अधीन इंद्रियों की, तो इसकी निशानी क्या दिखाई देती है, जो बार बार कहते हैं क्या करें, मेरे संस्कार है, चाहते नहीं है लेकिन मेरे संस्कार है, यही मेरी नेचर है,
अब बताओ ये अधीनता के संस्कार, वो नेचर समझ लेते हैं, माना अधीन है ना, मेरी नेचर है। तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि जिस समय ये कहते हो कि मेरे संस्कार है, मेरी नेचर है, क्या ये कमजोरी के संस्कार आपके संस्कार हैं? मेरे हैं, ये तो रावण के मध्य के संस्कार हैं, रावण की देन है, उसको मेरा कहना ही रॉन्ग है। आपके संस्कार तो जो बाप के संस्कार है वही संस्कार है। उस समय सोचो कि मेरा मेरा कहने से ही वो अधिकारी बन जाते हैं, मेरा संस्कार मेरे संस्कार का, तो वो जो संस्कार है वही अधिकारी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो उस समय सोचो कि मेरा मेरा कहने से ही वो अधिकारी बन गए हैं और आप अधीन बन जाते हो। समान बाप जैसा बनना है तो वो मेरे संस्कार नहीं, जो बाप के संस्कार है वो मेरे संस्कार है। बाप के संस्कार क्या है? विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामनाधारी। तो उस समय बाप के संस्कार सामने लाओ। लक्ष्य है बाप समान बनने का और लक्षण रहे हुए हैं रावण के। लक्ष्य है बाप समान बनने का, लक्षण रहे हुए रावण के। तो मिक्स हो जाते हैं कुछ अच्छे बाप के संस्कार, कुछ वो मेरे पास्ट के संस्कार, दोनों मिक्स रहते हैं ना, इसलिए खिटखिट होती रहती है। और संस्कार बनते कैसे है? कैसे बनते हैं संस्कार, वो भी सभी जानते हो ना। संस्कार कैसे बनते हैं? मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। पहले मन संकल्प करता है, फिर बुद्धि सहयोग देती है। अब मन इंद्रियों के वश है तो मन संकल्प करता है, फिर बुद्धि भी तो मन के अधीन हो गई, फिर वो भी उसमें हावी भर देती है, ठीक है, फिर वो ही गलत काम कर लेते हैं, तो फिर वो कर्म संस्कार बन जाते हैं। तो पहले मन संकल्प करता, फिर बुद्धि सहयोग देती और अच्छे या बुरे संस्कार बन जाते हैं। तो बाप दादा ने दादी के साथ साथ रिजल्ट में देखा कि मालिकपन का नेचुरल और नेचर का नशा रहे, वो बालकपन की भेंट में अभी भी कम है। बालक तो सहज कहते हैं बाबा बाबा मेरा बाबा, पर मालिक हूं मैं इंद्रियों का, मालिक हूं मैं अपने मन बुद्धि संस्कार का, बाबा कहते हैं वो कम है, वो अभी भी कम है। इसलिए बाप दादा देखते हैं कि समाधान करने के लिए फिर युद्ध करने लग पड़ते हैं। अब वो समस्या आ गई, प्रॉब्लम हो गया, तो फिर उसको कैसे जीतना है, फिर वो युद्ध करने लग पड़ते हैं। है ब्राह्मण लेकिन बीच बीच में क्षत्रिय बन जाते हैं। क्षत्रिय किसको बाबा कहते हैं? योद्धा, जो युद्ध ही करता रहता है वो क्षत्रिय। वो क्षत्रिय बन जाते हैं ब्राह्मण बनने की बजाय। तो क्षत्रिय नहीं बनना, ब्राह्मण सो देवता बनना। क्षत्रिय बनने वाले तो बहुत आने वाले हैं, ये तो सब बहुत पीछे आने वाले हैं। हाँ, वो क्षत्रिय ही बनेंगे, देर से आएंगे, बाद में आएंगे, अंत के समय आएंगे, तो बहुत आएंगे, वो तो क्षत्रिय बनेंगे। तो बाबा कहते हैं क्षत्रिय बनने वाले तो बहुत आने वाले हैं, वो पीछे आने वाले हैं, आप तो अधिकारी आत्माएं हो ना। तो सुना रिजल्ट, इसलिए बार बार मैं कौन ये स्मृति में लाओ। है ही नहीं लेकिन स्मृति स्वरूप में लाओ। ऐसे नहीं सोचो मैं तो हूं ही, पर है ही नहीं लेकिन स्मृति स्वरूप में लाओ। ठीक है ना, अच्छा रिजल्ट भी सुनाई। अभी समस्या का नाम, विघ्न का नाम, हलचल का नाम, व्यर्थ संकल्प का नाम, व्यर्थ कर्म का नाम, व्यर्थ संबंध का नाम, व्यर्थ स्मृति का नाम, सब समाप्त करो। क्या क्या समाप्त करो, समस्या विघ्न हलचल व्यर्थ संकल्प व्यर्थ कर्म व्यर्थ संबंध व्यर्थ स्मृति का नाम समाप्त करो और कराओ। ठीक है ना, करेंगे करेंगे तो दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ, फिर से उठाओ भाई दृढ़ संकल्प का हाथ, बाबा देख रहे हैं। करेंगे तो दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ, ये हाथ उठाना तो कॉमन हो गया है ना, हर बार बाबा कहते हैं और बच्चे हाथ उठा लेते हैं, तो ये हाथ उठाना तो कॉमन हो गया है, इसीलिए बाबा हाथ नहीं उठवाते, बाबा को पता ये कॉमन हो गया है सब हाथ उठा लेते हैं, तो ये हाथ नहीं उठवाते हैं। कौन सा हाथ उठवाते हैं? मन में दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ, मन में दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ, शरीर का हाथ नहीं, वो तो बाबा ने बहुत देख लिया, बहुत उठाते हो। जब सभी का मिलकर मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठेगा, तब ही विश्व के कोने कोने में सभी का खुशी से हाथ उठेगा, सबका विश्व के कोने कोने में सभी का हाथ उठेगा। कौन सा? हमारा सुख दाता शांति दाता बाप आ गया, ये सबका हाथ उठेगा। हमारा सुख दाता शांति दाता बाप आ गया, बाप को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाया है ना, सबने उठाया है कि हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, तो बाप को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाया है ना, उठाया है पक्का। टीचर्स ने उठाया है, टीचर्स सब हाथ उठाओ, टीचर्स सब हाथ उठाओ, वो टीचर्स भी आई है, शांतिवन से भी आई है, कर्नाटक जोन सेवा भी है तो आए हैं, तो फिर बाबा कहते पांडवों ने उठाया है पक्का। अच्छा डेट फिक्स की है कि वो दृढ़ संकल्प जो होगा उस अनुसार ही संस्कार होंगे, उस अनुसार ही मन सोचेगा, तो बाबा कहते अच्छा डेट फिक्स की है? डेट फिक्स नहीं की है, फिर बाबा पूछते हैं तो डेट फिक्स नहीं की है कि अच्छा कितना टाइम चाहिए डेट फिक्स करने में कि जब आप कब ये बन जाएंगे मालिक अथॉरिटी, कितना टाइम चाहिए? एक वर्ष चाहिए, दो वर्ष चाहिए, कितने वर्ष चाहिए? बाप दादा ने कहा था हर एक अपने पुरुषार्थ की यथाशक्ति प्रमाण अपनी नेचुरल चलने की या उड़ने की विधि समान अपनी डेट संपन्न बनने की खुद ही फिक्स करो। क्या मेरी स्थिति है, कैसी मेरी चलन है, हाँ उस अनुसार अपनी डेट खुद ही फिक्स करो। बाप दादा तो कहेंगे अब करो, अभी फिक्स हो जाए कि हाँ मुझे इस दिन ये बाप समान बनना है, बाप दादा तो कहेगा अब करो, लेकिन यथाशक्ति अपने पुरुषार्थ अनुसार अपनी डेट फिक्स करो और समय प्रति समय उसको चेक करो कि समय प्रमाण मनसा की स्टेज, वाचा की स्टेज, संबंध संपर्क की स्टेज में प्रोग्रेस हो रहा है, क्योंकि डेट फिक्स करने से स्वतः ही अटेंशन जाता है। दादी जी तो हमारी इसमें बहुत पक्की थी, कोई भी कार्य अभी धीरे धीरे चल रहा है, दादी कहती थी फिक्स डेट फिक्स करो, किस दिन ये पूरा होगा, किस दिन हम उद्घाटन करें, ठीक एकदम। माँ दादी इतनी स्ट्रांग होती थी, वो सब जो भी कारीगर होते थे इंजीनियर्स होते थे, दादी जी उनको कहती थी डेट फिक्स करो, तो डेट फिक्स जब हो जाती थी तो फिर जल्दी 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 काम हो जाता था। तो बाबा कहते हैं क्योंकि डेट फिक्स करने से स्वतः ही अटेंशन जाता है, बाकी सभी की अभी मुरली यहाँ तक, बाकी सभी की तरफ से चारों ओर की तरफ से संदेश भी आए हैं, ईमेल भी आए हैं, तो बाप दादा के पास तो ईमेल जब तक पहुंचे उसके पहले ही पहुंच जाता है बाबा के पास संदेश, दिल के संकल्प का ईमेल बहुत रफ्तार का होता है, दिल के संकल्प का ईमेल वो पहले पहुंच जाता है। तो जिन्होंने भी याद प्यार समाचार अपनी स्थिति का अपनी सेवा का भेजा है, उन सब को बाप दादा ने स्वीकार किया। इतने ढेर पत्र आते थे, इतने ढेर कार्ड आते थे, हाँ? तो सबको बाप दादा ने स्वीकार किया। याद प्यार तो सभी ने बहुत अच्छे उमंग उत्साह से भी भेजे हैं, तो बाप दादा उन सभी को चाहे विदेश चाहे देश सभी को रिटर्न में याद प्यार और दिल की दुआओं सहित प्यार और शक्ति की सकाश भी दे रहे हैं। स्वीकार कर लो। अच्छा, सब कुछ सुना, जैसे सुनना सहज लगता है ना, अच्छा लगता है ना, बाबा की मुरली सुनते हैं तो जैसे सुनना सहज लगता है ना, ऐसे ही सुनने से परे स्वीट साइलेंस की स्थिति भी जब चाहो जितना समय चाहो उतना समय मालिक होके, पहले विशेष है मन के मालिक, इसलिए कहा जाता है पहले मन का मालिक बनो, मन आपकी ऑर्डर में चले, तो इसीलिए कहा जाता है मन जीते जगत जीत। तो मन आपके ऑर्डर में चला तो सब कुछ ऑर्डर में आ जाएगा, इसलिए कहा जाता है मन जीते जगत जीत। तो अभी सुना देखा आत्मा राजा बन, मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। बाबा ने बहुत कुछ सुनाया, तो आत्मा राजा बन मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। मन बुद्धि संस्कार ये तीनों के मालिक बन ऑर्डर करो। स्वीट साइलेंस ऑर्डर करो, क्या ऑर्डर करो, स्वीट साइलेंस। तो अनुभव करो कि ऑर्डर करने से अधिकारी बनने से तीनों ही ऑर्डर में रहते हैं। बाबा ने कहा स्वीट साइलेंस ऑर्डर करो मन बुद्धि संस्कार को, तो ये तीनों ही अधिकारी बनने से तीनों ही ऑर्डर में रहते हैं। अभी अभी अधिकारी की स्टेज पर स्थित हो जाओ, चलो भाई स्थित हो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई 2 सेकंड के लिए, मन बुद्धि संस्कार मेरे ऑर्डर में, अभी अभी अधिकारी की स्टेज पर स्थित हो जाओ, तो बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सदा स्वमानधारी सत्यता के शक्ति स्वरूप, पवित्रता के सिद्धि स्वरूप, सदा अचल अडोल स्थिति के अनुभवी, स्वपरिवर्तक और विश्व परिवर्तक, सदा अधिकारी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को बाप द्वारा अधिकार दिलाने वाले, चारों तरफ के बाप दादा के लक्की और लवली आत्माओं को परमात्म याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो, और बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा की यही शिक्षा है। श्रेष्ठ पद पाना है तो क्या शिक्षा देते हैं बाबा, कि बच्चे स्वयं को बदलो, स्वयं को बदलो, यह है श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा की शिक्षा। स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को व अन्य आत्माओं का बदलने का सोचते हो या संकल्प आता है कि ये सेल्वेशन मिले, ये सहयोग दे, ये सहारा मिले तो परिवर्तन हो, ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वाले की प्रारब्ध भी आधार पर ही रहेगी, क्योंकि जितनों का आधार लेंगे उतना जमा का खाता शेयर्स में बट जाएगा। उनको आधार बनाया ना तो वो फिर जो आपको मिलना है वो फिर शेयर्स में उन सबको भी शेयर मिल जाएगा, उतना जमा का खाता शेयर्स में बट जाएगा। इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है, किसी का आधार मत लो, अपने आप को ही बदलो। स्वयं को परिवर्तन होना है, मैं स्वयं विश्व का आधार मूर्त हूँ, मैं स्वयं विश्व का आधार मूर्त हूँ। स्लोगन, संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। उसके अंतर्गत जैसे कोई कमजोर होता है तो उनको शक्ति भरने के लिए क्या करता है डॉक्टर, उसको बहुत वीकनेस महसूस हो रही है और डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, तो फिर उनको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं, है ना, आईवी चढ़ाते हैं ना, ग्लूकोज चढ़ाते हैं। ऐसे जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हो तो यह साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। शक्ति भरने का काम क्या करती है, साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है उतना ही बाप साथी भी याद रहता है, और अर्थात साथ रहता है। साक्षी बन जाओ, हाँ, कोई बाबा कहते हैं उससे अशरीरी और विदेही स्थिति सहज अनुभव होगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हमारे ग्लोबल हमारे पीस पार्क के बेजुल भाई, किशोर भाई, वासंती बहन ने निमंत्रण भेजा है। आज पीस पार्क के 40 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उनको कहा है माणिक जयंती समारोह, माणिक जयंती 40 साल, तो खास निमंत्रण दिया है मधुबन निवासियों को। और जिनको अपनी कोई गाड़ी हो, आपको कुछ मना अपना साधन हो तो मधुबन निवासियों को तो विशेष निमंत्रण है, अपने साधन तो हर एक के पास लगभग है ही, तो सब तो शाम को 3 बजे आप सभी को वहां पहुंचना है पीस पार्क, जहां पर बड़ा अच्छा प्रोग्राम रखा है। सिरोही के महाराजा भी आ रहे हैं, कई वीआईपीज भी आ रहे हैं, और नवीन गीत का भी उद्घाटन होगा, थीम गीत का भी लॉन्चिंग है, और अथक सेवाओं का सम्मान समारोह भी होगा, सांस्कृतिक प्रस्तुति भी है, संगीत संध्या भी है। संगीतकार श्री हेमंत आचार्य, म्यूजिक डायरेक्टर मुंबई, वो भी आ रहे हैं, तो अच्छा प्रोग्राम है। तो सबके लिए तो मुश्किल होगा, बसे नहीं है, क्योंकि नीचे भी बहुत पार्टियां आ रही है, तो मधुबन वाले जिनको अपने वाहन है या जिसको वाहन है तो 3 बजे 3:30 के अंदर सभी पहुंच जाएंगे, तो प्रोग्राम शुरू हो, ठंड हो जाती है बाद में, जल्दी अंधेरा भी हो जाता है। तो विशेष मधुबन वालों को किशोर भाई, वासंती बहन और बेजुल भाई ने निमंत्रण दिया है। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद डबल विदेशी भाई बहन सब बैठे रहेंगे, आपसे कुछ और सूचनाएं आपको देनी है। ठीक है, ओम शांति।